दिन भर तारीख 26 जून दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आपातकाल के 43 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले,
आपातकाल के दिनों की मानसिकता और वर्तमान कांग्रेस की इम्पीचमेंट मोशन, उस मानसिकता के में कोई अंतर नहीं आया है।
कांग्रेस ने दिया जवाब,
49 महीनों के आज के औरंगजेब के कार्यकाल में सवाल पूछने पर क्या हर व्यक्ति को देशद्रोही करार नहीं दिया जाता।
मोबाइल फोन पर गेम खेलने की लत है एक बीमारी।
मुझे बहुत गंदा लगता है जब बीच में कोई चीज परेशान करते है खेलते हुए, जब क्योंकि टोटली उसके तो आपका ध्यान रहता है।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारतीय जनता पार्टी 43 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ देशभर में काला दिवस मना रही है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक परिवार के निजी हितों के लिए पूरे देश को जेल बना दिया गया था। मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि आज के दौर में लोकतंत्र को ही बंधक बना लिया गया है। अपनी तरह के एक पहले मामले में स्पेन में एक पूर्व डॉक्टर पर मुकदमा शुरू किया गया है। इस डॉक्टर पर करीब 50 साल पहले स्पेन में जनरल फ्रांको के शासनकाल में एक मां से उसका बच्चा चुराने का आरोप है। जनरल फ्रांको के शासनकाल में स्पेन में राजनीतिक और धार्मिक वजहों से 3 लाख से अधिक बच्चों को उनके परिजनों से छीन कर कट्टरपंथी परिवारों को सौंप दिया गया था। जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको ने 1939 से लेकर 1975 तक स्पेन पर सैन्य शासन किया था। अदालत के बाहर प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति फ्रांसिस्को कास्त्रो ने बताया कि उनके भी 2 बच्चों को चुरा लिया गया था। उन्होंने कहा, मेरे 2 बच्चे चुरा लिए गए थे, दोनों जुड़वा थे। उन्होंने मेरे बच्चों को मुझे दिखाया तक नहीं था, मुझे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिया गया था जिस पर लिखा था 2 स्वस्थ लड़के। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे बेटे दिखाओ और उन्होंने मना कर दिया। सीरिया में सरकार समर्थक सैन्य बलों ने देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में विद्रोहियों के खिलाफ पहली बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीरिया की सरकारी मीडिया और कार्यकर्ताओं के मुताबिक सैन्य बलों ने डेरा प्रांत के उत्तर पूर्वी इलाके में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका जॉर्डन और इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स क्षेत्र से सटा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते सप्ताह से हिंसा में तेजी आने के बाद से 45,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हवाई हमलों में नागरिक मारे गए हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मानवाधिकार मामलों के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के प्रवक्ता येंस लाअके ने कहा, दक्षिण पश्चिमी सीरिया के डेरा प्रांत में हाल के दिनों में बड़ी हिंसा की रिपोर्टों से हम चिंतित हैं। इससे 7.5 लाख लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। करीब 45,000 लोगों को अपने घर छोड़कर जॉर्डन की सीमा के पास जाना पड़ा है। इन लोगों को तुरंत मानवीय मदद की जरूरत है। इसी बीच सीरियाई सरकारी सेना ने राजधानी दमिश्क के पास हिजबुल्ला के 2 ठिकानों पर इजरायली मिसाइल हमले की खबरें दी हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र के जांच दल का कहना है कि कासाई प्रांत में सरकार और विद्रोहियों दोनों की ओर से ही मानवता के खिलाफ अपराध किए गए हैं जो युद्ध अपराधों की श्रेणी में आते हैं। कासाई में 2 साल से सरकारी सैन्य बलों और मिलिशिया के बीच संघर्ष चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिलिशिया जबरदस्ती बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। सरकारी सैन्य बलों पर गांवों को जलाने और महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार करने के आरोप भी लगाए गए हैं। जांच दल का कहना है कि सरकार को अपराधियों को सजा और पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। इस संघर्ष की वजह से 10 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इरिट्रिया का एक उच्च स्तरीय दल इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच तनाव खत्म हो सकता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आपातकाल के 43 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर साल इमरजेंसी को याद किया जाता है। देश के इतिहास के लिए ये काला दिन है। लोकतंत्र को सचेत रखने के लिए इमरजेंसी को याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी कांग्रेस का पाप है और ये पाप जानबूझकर किया गया था। कांग्रेस की मानसिकता में आज भी बदलाव नहीं आया।
देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने का काम आपातकाल के दिनों की मानसिकता और वर्तमान कांग्रेस की इम्पीचमेंट मोशन, उस मानसिकता के में कोई अंतर नहीं आया है, इसका जीता जागता सबूत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश को जेलखाना बना दिया।
कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में, लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेलखाना बना देंगे। और सब कुछ संविधान के तहत किया गया था। ये देखिए, उनकी चतुराई देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हमले पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी।
49 महीनों के आज के औरंगजेब के कार्यकाल में सवाल पूछने पर क्या हर व्यक्ति को देशद्रोही करार नहीं दिया जाता? क्या खुद के गुरु श्री लालकृष्ण अडवाणी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जबरन मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेज दिया जाता?
तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है और ये दिन आपातकाल को लगने का है। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी से, जिन्होंने कि आपातकाल के उस दौर को देखा है। मैंने उनसे इन दोनों की जो प्रतिक्रिया है उन पर टिप्पणी मांगी।
ये तो भाई, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ जो बातें करती है आमतौर से, उनमें से एक ये भी उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 43 साल पहले इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, अब वो इमरजेंसी और उसका रिएक्शन, वो एक अजीब और गरीब कहानी है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल उसका नतीजा ये हुआ कि मुरारजी देसाई की सरकार बनी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी मंत्री बन के आए। पहली कोअलिशन सरकार 1977 में बनी। ये इमरजेंसी के बाद का जो एक बोहरान मंथन था, उसका उसके नतीजे में ये निकला।
सईद नकवी साहब, आपने उस दौर को देखा है, कितना खतरनाक दौर था पत्रकारों के लिए, या फिर ये कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी जैसे जो शब्द हैं वो खत्म हो गए थे।
उस जमाने में मैं इसमें स्टेट्समैन में था और इंडियन एक्सप्रेस के पेजेस यानी एडिटोरियल कॉलम जो थे वो खाली रहते थे, क्योंकि वहां पे ये हमारे वीसी शुक्ला इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे वो बाकायदा रोज चेक करते थे कि क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा। ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
सईद नकवी साहब, ये आप उस दौर की बात कर रहे हैं जबकि इमरजेंसी भारत में लगी थी, लेकिन आज बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज का जो दौर है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो समय है, ये उस वक्त से भी बुरा हो गया। कांग्रेस ये बात लगातार कह रही कि आज का समय आपातकाल से भी ज्यादा बुरा है। क्या कांग्रेस को अपने आप को डिफेंड करने का कोई और तरीका नहीं सूझता है?
आजकल जो हो रहा है इतना बुरा, कांग्रेस इमरजेंसी से अलग हटके, ये हालात कांग्रेस के जमाने में नहीं थे, बल्कि इसके बरक्स और दूसरे तरीके से जर्नलिस्टों को करप्ट किया जाता था। कंट्रोल करने के बहुत से तरीके थे, लेकिन आजकल जो हो रहा है कि बाकायदा एक इन्हें कत्ल कर देना, असैसिनेट कर देना, थ्रेटन करना, ट्रोल करना, और ये कि अगर तुमने ये लिखा तो तुम बचोगे नहीं, इस किस्म के ये जो एक भय में जर्नलिज्म चल रही है, ये किसी हद तक जर्नलिस्ट खुद भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं।
सरकार कहती है कि आपातकाल के दौरान भय और आतंक का माहौल था, और विपक्ष कहता है कि इस समय आतंक का माहौल है।
ये दरअसल एक ही थैली के चट्टे बट्टे किसी हद तक हैं, लेकिन जो हदें पिछले 3 साल में क्रॉस की गई हैं, वो नॉन इमरजेंसी फेज में कांग्रेस के जमाने में नहीं हुई थी।
आपातकाल का वो दौर और वर्तमान समय कैसा है, इसका विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
बीबीसी इन्वेस्टिगेशन से एक विदेशी राहत संस्था के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की बात सामने आई है। दुनिया भर की सबसे बड़ी राहत संस्थाओं में से एक मेंडिसा सा फ्रंटियर में काम कर चुके लोगों ने बताया कि उन्होंने कीनिया और मध्य अफ्रीका में काम कर रहे राहत कर्मियों को कुछ महिलाओं की सेवाएं लेते देखा है और उन्हें लगता है कि वो महिलाएं सेक्स वर्कर थीं। एक विसिल ब्लोअर ने बताया कि लाइबेरिया के हालात ऐसे हैं कि वहां दवाओं के बदले सेक्स की मांग करना मुमकिन है। मेंडिसा फ्रंटियर को डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। संस्था ने कहा कि वो आरोपों से दुखी हैं और मामले की जांच करवाएगी। बीबीसी संवाददाता एना एडम्स की रिपोर्ट सुनिए हमारी सहयोगी पायल भुयन से।
दुनिया की सबसे बड़ी राहत संस्थाओं में से एक मेडिसा सॉ फ्रंटियर खतरनाक देशों में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई करती है, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने बताया कि कुछ राहत कर्मियों ने वहां मजबूर औरतों का फायदा उठाया। हमने कई महीनों तक मेडिसा सॉ फ्रंटियर में काम करने वाली महिलाओं से बात की, उन्होंने भी हमें ऐसी ही बातें बताई। हमने संस्था में यौन उत्पीड़न की कई कहानियां सुनी, कई बार तो सेक्स वर्कर के इस्तेमाल की बातें भी सुनी। हमारा इन्वेस्टिगेशन डॉक्टरों या नर्सों से जुड़ा नहीं था। हमें बताया गया कि संस्था के लॉजिस्टिकल स्टाफ में काम कर रहे लोग अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
स्टाफ का एक सीनियर मेंबर लड़कियों को दफ्तर में लाता था। मुझे पक्के तौर पर तो नहीं पता कि उनके शारीरिक संबंध हैं, लेकिन ऐसा लगता जरूर था। वो लड़कियां बहुत कम उम्र की थी और उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो सेक्स वर्कर थीं। उस शख्स पर सवाल उठाना मुश्किल था क्योंकि वो बहुत सीनियर था।
हम यूरोप में एक और विसल ब्लोअर से मिले। उसने बताया कि स्टाफ के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा था कि औरतें दवाइयां हासिल करने के बदले यौन सेवाएं देने को तैयार।
उसने कहा कि लाइबेरिया में दवाओं के बदले लड़कियों से यौन संबंध बनाना बेहद आसान है। उन्होंने इशारों में बताया कि इबोला की वजह से अपने माँ बाप खो चुकी कई लड़कियाँ दवाओं के बदले कुछ भी करने को तैयार थीं।
क्या वो खुद वहाँ थे?
Yes, he had.
हाँ, वो वहाँ मौजूद थे, बल्कि वो इसको लेकर बड़ी डींगे मारते थे। वहाँ मौजूद 3-4 लोगों के सामने खुल कर बोलना, मुझसे सीधे सीधे ये बात बताना, ये सब क्या है?
इन दावों की जांच करना हमारे लिए नामुमकिन था क्योंकि विसल ब्लोअर उस वक्त लाइबेरिया में मौजूद नहीं थी। जब हमने इन आरोपों को एमएसएफ के सामने रखा तो उन्होंने कहा उन्हें और जानकारी चाहिए। एमएसएफ के लिए अफ्रीका में काम कर चुके एक और कर्मचारी ने बताया कि बड़े पैमाने पर स्थानीय सेक्स वर्कर्स की सेवाएं ली जाती है।
हमारी एक वरिष्ठ सहयोगी एक महिला को कंपाउंड में लेकर आए। वो करीब 50 साल के हैं, लेकिन वो लड़की बहुत छोटी थी। साफ लग रहा था कि वो सेक्स वर्कर है, लेकिन वो शख्स उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। मैंने अपने एक और सहयोगी को एक यौन कर्मी के साथ टॉयलेट जाते देखा। मैं उसे जानती थी क्योंकि वो एक बार में काम करती थी। उसने बताया कि उन दोनों ने सेक्स किया और उसके बदले उसे पैसे भी मिले।
हमने एक अंदरूनी रिपोर्ट देखी जिसके मुताबिक एमएसएफ 2016 में लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि संस्था में काम कर रही एक तिहाई महिलाओं ने कहा कि काम के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यौन शोषण के आरोपों की वजह से पिछले साल 19 लोगों को नौकरी से निकाला गया। एमएसएफ ने कहा कि उन्होंने आरोपों की जाँच की, लेकिन उनके लंदन ऑफिस से जुड़े एक भी आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई।
बीबीसी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में जो आवाजें आपने सुनी वो विसिल ब्लोअर की हैं और उनके नाम हमने गोपनीय रखे हैं। भारत का राज्य मध्य प्रदेश, जहां 2016 में सेंट्रल जेल भोपाल से भागे सिमी के 8 विचाराधीन कैदियों के फरार होने और पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की जांच के लिए गठित जस्टिस पांडे आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट दी गई और ये और कार्रवाई को जरूरत के हिसाब से जायज ठहराया गया। पेश है शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30-31 अक्टूबर 2016 की रात सेंट्रल जेल भोपाल से सीमी के 8 विचाराधीन कैदी फरार हो गए थे और उसके बाद उन्हें पुलिस मुठभेड़ में शहर के बाहर मार दिया गया था। इस घटना की जांच के लिए जस्टिस एस के पांडे आयोग का गठन किया गया था। उनके द्वारा दी गई 17 पेज की रिपोर्ट विधानसभा में रख दी गई। मुठभेड़ की घटना को जायज ठहराते हुए आयोग ने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से यह कार्रवाई ठीक थी। बंदियों को चेतावनी देकर सरेंडर करने के लिए कहा गया था, पर जब गोली चलाई तो पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कैदियों ने फरार होने के लिए प्रहरी रामशंकर यादव की हत्या कर दी थी। जेल मंत्री अंतर सिंह आर्य ने बताया,
रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर सामान्य प्रशासन मंत्री जी ने प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट के अंदर जो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई।
वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय जेल भोपाल के परिसर की दीवारों की ऊंचाई कम थी। बंद कैदी आसानी से चादर के जरिए सीढ़ी बनाकर भागने में कामयाब हो गए। आयोग ने सिफारिश की है कि इसकी ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि विपक्ष ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पूरी रिपोर्ट को बेतुका करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को छुपाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब इस रिपोर्ट में नहीं मिलते। किस तरह से कैदियों को नए कपड़े मिले और उनके पास हथियार कहाँ से आए, यह रिपोर्ट में कहीं भी नहीं बताया गया है। उन्होंने इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। अजय सिंह ने कहा कि आखिरी सेशन में इसे लाना बताता है कि सरकार इससे फायदा उठाना चाहती है।
The entire report is pure hogwash. How did the convicts get new clothes? Where did the weapon come from? That's entirely missing from the entire report. So we smell a rat that it is all kind of a cover up. Timing of the report just in the last session itself speaks volumes of its veracity.
वहीं इस मामले को लेकर लड़ रही पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की माधुरी बहन कहती हैं कि यह रिपोर्ट उसी तरह से आई जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। यह पूरी तरह से एक तरफा है और सरकार से इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं थी।
रिपोर्ट ये तो एक मजाक है। 8 लोगों का हत्या हुआ है और हत्यारा कोई भी नहीं निकला, तो ये तो एक व्हाइट वॉश जॉब है और ये एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो कमीशन का कार्रवाई हुआ था उससे हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी।
भोपाल का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें पुलिस का दावा था कि उन्होंने सीमी सदस्यों को सरेंडर करने को कहा था, पर उन्होंने गोली चलाई और धारदार हथियारों से हमला शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और 8 बंदी मारे गए। ये कैदी रात में केंद्रीय जेल से फरार हो गए थे। 31 अक्टूबर 2016 को गुनगा के मनीखेड़ी गांव के पास 8 बंदियों की कथित तौर पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वे मारे गए। मामले की न्यायिक जांच का जिम्मा जस्टिस एस के पांडे को सौंपा था। पांडे ने 24 सितंबर 2017 को प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार किया व जेल विभाग ने आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
बिहार का जिक्र करते हैं। अपने ही घर में कथित तौर पर नजरबंद बिहार की एक लड़की पर पटना हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने उस लड़की को बड़ी राहत देते हुए उसके माता पिता से अलग रहने की व्यवस्था की। क्या है ये पूरा मामला और क्या है हाईकोर्ट का आदेश, सुनिए सीटू तिवारी की इस रिपोर्ट में।
बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट जज को अपनी बेटी को घर में बंद करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला मंगलवार को सुनाया। फैसले में लड़की को 15 दिन के लिए अपने माता पिता से अलग पटना स्थित लॉ यूनिवर्सिटी में रहने, एक महिला कांस्टेबल की 24 घंटे सुरक्षा और लड़की को किसी से भी मिल सकने की अनुमति दी गई है। मामले से जुड़े वकील राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया,
फैसले में ये हुआ कि अभी लड़की जो है यहाँ पे सीएनएलयू में रहेगी 15 दिन। 15 दिन रहने के बाद सीएनएलयू में वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल रहेगी साथ में, वो किसी से भी मिल सकती है, किसी से भी बात कर सकती है लड़की, इवन हमारे मुवक्किल और हमारे जूनियर सिद्धार्थ बंसल से भी वो बात कर सकती है। वो फ्री है टू टेक एनी डिसीजन ऑफ हर ओन। This is the judgment of the honorable Chief Justice.
दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। लड़की दिल्ली में वकालत करने वाले 25 वर्षीय सिद्धार्थ बंसल से प्रेम करती हैं। लड़की के पिता को जब ये मालूम चला तो उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। बाद में ये खबर जब एक लीगल पोर्टल में छपी तो पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बीती सोमवार को ये आदेश दिया कि लड़की को मंगलवार दोपहर 2:15 पर पेश किया जाए। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन के चैम्बर में मंगलवार को जब पीड़िता कोर्ट में पेश हुई तो उससे उसकी उम्र और माता पिता के साथ रहने में उसकी मर्जी के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में पीड़िता ने माँ बाप के साथ न रहने की और सिद्धार्थ से शादी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 12 जुलाई को होगी। कोर्ट के फैसले से खुश सिद्धार्थ बंसल ने बीबीसी से बहुत नपे तुले अंदाज में कहा,
I want to say something. I want to thank media for this and bar and bench and all the media personals.
इस मामले में कोर्ट ने मीडिया को पीड़िता और उसके पिता के बारे में कोई भी जानकारी या नाम नहीं छापने का आदेश दिया है। हालांकि स्थानीय मीडिया में पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ मारपीट होती थी, उसको खाना नहीं दिया जाता था और उसका मोबाइल छीन लिया गया था। लेकिन सिद्धार्थ के वकील और खुद सिद्धार्थ ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि खुद पीड़िता और वो लोग नहीं चाहते कि पीड़िता के घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो।
एट द एंड आई एम हैप्पी विद द कोर्ट डिसीजन।
कि जुडिशियल ऑफिसर और जुडिशियरी ये बहुत ही सम्माननीय विषय और सम्माननीय सबके लिए है, तो वहाँ पे हमने कोई वर्ड लिखा है कि आप हमारे पिताजी के अगेंस्ट कोई एक्शन लें, कि हम लोगों ने कोई भी ऐसा चैनल नहीं छोड़ा इस न्याय को पाने के लिए जहाँ पे हमें कोई थोड़ी सी भी राहत दे सके। मैं पिछले महीने से पूरे SHO, SP, DM, DGP, खगड़िया और पटना पूरा एक कर दिया, बावजूद इसके हमें कोई न्याय नहीं मिला।
ये थे सिद्धार्थ और सिद्धार्थ के वकील राजीव कुमार श्रीवास्तव के शब्द। ये मामला अगर अभिभावकों के लिए नजीर पेश करता है तो ये सवाल भी छोड़ जाता है कि क्या कानून के लिए सब बराबर हैं, क्योंकि पीड़िता के पिता अगर एक जज के बजाय कोई सामान्य आम भारतीय नागरिक होते तो कोर्ट का रुख क्या होता। सीटू तिवारी, BBC, पटना।
आपने तमाम ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि ज़रा सा भी कहीं पर भी वक्त मिला तो मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चे तो गेम खेलते ही हैं, बड़े भी इसमें पीछे नहीं हैं। दरअसल शुरू शुरू का शौक कब लत में बदल जाए पता ही नहीं चलता। मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने की लत क्या आपको भी है? अगर हाँ तो ये खतरनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोबाइल गेमिंग को एक एडिक्शन मानते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहा है। सुनिए हमारी सहयोगी सरोज सिंह की रिपोर्ट।
ग्यारह साल के सृजन मल्लिक दिन में एक घंटा रोज मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उनकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि कमरे में अकेले में वो गेम खेलेंगे। दूसरी शर्त ये कि गेम खेलते समय बीच में मम्मी ना तो खाने के लिए बोलेंगी और ना ही नहाने के लिए टोकेंगी। तीसरी शर्त ये कि गेम खेलते समय पढ़ाई की बात कोई नहीं कर सकता। गेम खेलने के लिए सृजन की ये सब बातें घर पर मान भी ली जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सृजन की बात नहीं मानने पर सृजन मम्मी की बात नहीं मानते।
मुझे बहुत गंदा लगता है जब बीच में कोई चीज परेशान करती है खेलते हुए, जब क्योंकि टोटली उसके तो आपका ध्यान रहता है, आपको ध्यान चाहते नहीं हो हटे।
यही हाल 14 साल की सना हैदर का भी है। 9वीं में पढ़ने की वजह से पढ़ाई का दबाव उन पर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रोज अपने वीडियो गेम या फिर मोबाइल गेम खेलने का वो वक्त निकाल ही लेती हैं। उन्हें स्नाइपर सेशन नाम का गेम बेहद पसंद है, जिसमें स्नाइपर बनकर उन्हें शूट करने में जो सुखद अनुभूति होती है वो कहीं और नहीं मिलती।
एक गेम है, इट्स थोड़ा सा वायलेंट है, इट्स कॉल्ड स्नाइपर असैसिन। बेसिकली यू बी द स्नाइपर एंड शूट पीपल, जो भी उनका वो होता है, तो यू गेट मिशंस टू दो, वो बहुत एक्साइटिंग हो जाता है। वैसे तो एक्साइटमेंट बनी रहती है बिकॉज़ गेम्स ऑलवेज मेक यू एडिक्टिव टुवर्ड्स देम।
सना से मिलती जुलती हालत इमाद सिद्दीकी की भी है।
मेरे सिबलिंग्स और मुझ में ये कि पहले मम्मा पापा का काम करते हैं और उससे पहले ये कह देते हैं कि अगर हम आपका काम करेंगे तो आप हमें मोबाइल देंगे खेलने के लिए।
मोबाइल पर घंटों गेम खेलने की लत इन दिनों हर बच्चे में कमोबेश देखने को मिलती है। इसको लेकर कई घर पर माएं परेशान हैं, क्योंकि गेम खेलने की वजह से बच्चों का बाहर आना जाना बंद हो गया है। हर कोई बच्चों को इसलिए मोबाइल देता है ताकि बाकी काम वो समय पर कर सके। सृजन की माँ प्रोमिला मल्लिक कहती हैं,
इसका एडिक्शन इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि आप देखेंगे कि बच्चों को जब मौका मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ये गेम्स खेलना चाहते हैं। बाहर जाकर खेलना छूट चुका है ऑलमोस्ट, एंड ये उनको बहुत इम्पैक्ट कर रहा है उनकी सोशल लाइफ, उनकी यू नो ब्रेन डेवलपमेंट। जैसे हम लोग अपने बचपन में हमारे बहुत सारे दोस्त और फ्रेंड्स होते थे, ये फ्रेंड सर्कल उनका रिड्यूस हो गया है। दो चार फ्रेंड्स होंगे और अगर उनके घर भी बाहर खेलने भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनके घर किसी और के घर में बैठ के वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं।
अक्सर मोबाइल पर गेम खेलने का शौक कब लत बन जाए इसका पता नहीं चलता। पिछले दिनों ब्लू व्हेल नाम का एक गेम काफी चर्चा में रहा। इसे खेलने वालों को ऐसी लत थी कि रात रात को उठकर गेम में दिए गए चैलेंज को पूरा करने के लिए लोग तत्पर रहते थे। कई मौतों को इस गेम से जोड़कर भी पेश किया गया। कमोबेश पोकेमोन गो खेलने वाले लोगों की भी यही हालत थी। गेम खेलते खेलते कब उठकर चलने लगते किसी को अंदाजा नहीं होता था। ऐसे ही मामलों को देखते हुए मोबाइल पर गेम खेलने की आदत से अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूरी बनाने की सलाह दी है। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज वाले अपने मैनुअल में 27 साल बाद बदलाव किया है और गेमिंग एडिक्शन को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर यानी दिमागी बीमारी की श्रेणी में रखा है। दिल्ली में एम्स के बिहेवियरल एडिक्शन सेंटर चलाने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा बताते हैं कब और कैसे गेमिंग एक एडिक्शन का रूप लेकर बीमारी बन जाती है।
देखिए, हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो एक्सट्रीम एंड है, जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि अब कोई ना कोई मदद की जरूरत लग रही है घर पे लोगों को, कि दिन में 12 घंटे 18 घंटे लोग गेम खेल रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, या अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत दिन हो गए कि वो नहा भी नहीं रहे हैं, अपने खाने को लेके वो रेगुलर नहीं है, कई महीने हो गए उनको अपने कॉलेज में क्लास अटेंड किए हुए। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक्सट्रीम एंड पे हैं स्पेक्ट्रम के। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, जिनमें प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है।
गेमिंग एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों की मदद लेनी पड़ती है। कई डॉक्टर मानते हैं कि दोनों एक समय पर इलाज करें तो मरीज में फर्क जल्दी देखने को मिलता है। हालांकि अभी भारत में कितने लोग इस बीमारी के शिकार हैं इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इस बीमारी के मरीज ज्यादातर 16 से 24 साल के उम्र के होते हैं। सरोज सिंह, बीबीसी दिल्ली।
मोबाइल पर लगातार खेलना कब एक बीमारी बन जाए पता ही नहीं चलता। ये विशेष रिपोर्ट सुन रहे थे आप, और अब कार्यक्रम में वक्त है खेल की खबरों का। सामने इंदु पांडे बैठी हैं। इंदु, कहां से शुरू कर रहे हैं खेल समाचारों को?
शुरुआत करते हैं फीफा से, जिसमें कि अंक तालिका में क्रोएशिया 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और अगले दौर में जगह बना चुका है। नाइजीरिया के 2 मैचों में 1 जीत के साथ 3 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। आइसलैंड और अर्जेंटीना के 1-1 अंक हैं, लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल और स्पेन अंतिम 16 में पहुंच गए हैं और आज शाम 7:30 बजे ग्रुप सी में डेनमार्क का सामना फ्रांस से और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पेरू से शुरू हो चुका है। फ्रांस की टीम फुटबॉल विश्व कप के अपने दोनों मैच जीतने के बाद नॉकआउट में पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरे दौर में अपनी राह आसान करने के लिए उसका लक्ष्य ग्रुप सी में शीर्ष पर बने रहने का है, जिसके लिए आज उसे डेनमार्क के खिलाफ बड़ी जीत की दरकार रहेगी। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और पेरू के खिलाफ दोनों मैच जीते हैं और वो नॉकआउट में जगह बना चुकी है, लेकिन अंतिम 16 में अच्छी लय में खेल रही ग्रुप डी की क्रोएशिया से बचने के लिए उसे अपने ग्रुप सी में टॉप पर बने रहना होगा। विश्व कप से बाहर होने की कगार पर खड़ी अर्जेंटीना अपने स्टार फॉरवर्ड और ग्रेटेस्ट ऑल टाइम कहे जा रहे लियोनेल मेस्सी पर एक बार फिर से भरोसा कर रही है। और फुटबॉल विश्व कप में पहली बार खेल रही आइसलैंड की टीम ने खिताब की दावेदारी अर्जेंटीना से पहला मुकाबला ड्रॉ खेलकर सभी को चौंका दिया, लेकिन नाइजीरिया ने उसे अगले मैच में 3-0 से पराजित कर दिया। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। साइना नेहवाल कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज दोपहर साइना ने हांगकांग की यिप पुई यिन को 21-12 21-16 से हराया। अगले दौर में उन्हें दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची का सामना करना होगा। लगभग 1 महीने के विश्राम के बाद पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के चोटी के शटलर BWF विश्व टूर के दक्षिण पूर्व एशिया चरण से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और अब लेते हैं टेनिस की खबर। टेनिस में विंबलडन में 7 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स के प्रदर्शन पर ऑल इंग्लैंड क्लब में एक बार फिर सबकी निगाहें होंगी, जो मां बनने के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। और क्रिकेट की अगर हम बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम 9 से 24 नवंबर तक वेस्टइंडीज में खेले जाने वाले महिला T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया इंदु पांडे, और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
भारतीय जनता पार्टी 43 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ देश भर में काला दिवस मना रही है। अपनी तरह के एक पहले मामले में स्पेन में एक पूर्व डॉक्टर पर मुकदमा शुरू किया गया है। इस डॉक्टर पर करीब 50 साल पहले स्पेन में जनरल फ्रांको के शासनकाल में एक मां से उसका बच्चा चुराने के आरोप हैं। सीरिया में सरकार समर्थक सैन्य बलों ने देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में विद्रोहियों के खिलाफ पहली बड़ी कामयाबी हासिल की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र के जांच दल का कहना है कि कासाई प्रांत में सरकार और विद्रोहियों दोनों की ही ओर से मानवता के खिलाफ अपराध किए गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला कपिल देव सिंह ने। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।